हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कल कुछ विशेष दिन है, कल कुछ विशेष दिन आने वाला है, है नरसिंह चतुर्दशी। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो मुझे आज्ञा हुई है नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन करने के लिए। लेकिन आज कुछ विशेष दिन है, आज भी कुछ विशेष दिन है, ज्ञानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस। कितने लोग जानते हैं ज्ञानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है आज? तो आप लोग बहुत पीछे हैं। कितने लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं माला पर, है ना? हरे कृष्ण मंत्र का अगर जप कर रहे हैं माला पर, तो इसका मतलब हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो हरे कृष्ण आंदोलन के जो त्योहार हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए, उनकी सूचना आपके पास होना चाहिए। जो वैष्णव कैलेंडर के नाम से छपता है, यहाँ बुक शॉप में मिलता है, तो वो आप लोगों को लेना चाहिए। आज बहुत ही विशेष दिन है, तो नरसिंह भगवान की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं ज्ञानंद प्रभु का भी जो है आपको कुछ परिचय दें। प्रभुपाद के शिष्य थे और प्रभुपाद के सामने ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये भगवत दर्शन पत्रिका के कुछ पेज हैं जो कि 2002 में जो है मार्च अप्रैल का अंक था, उसमें ज्ञानंद प्रभु के बारे में कुछ बातें छपी थी। तो इतना समय नहीं कि सब कुछ इसमें से पढ़ के सुनाया जाए, क्योंकि हम संक्षेप में ज्ञानंद प्रभु के बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आप लोग जानते हैं कि प्रभुपाद ने ये इस्कॉन ये जो संस्था है, तो इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में, है ना? और न्यूयॉर्क से जो है प्रभुपाद जी आए थे 16 जनवरी 1967 को सैन फ्रांसिस्को, तो वहां पर भी ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रभुपाद ने उद्घाटन किया था। तो सैन फ्रांसिस्को में जब प्रभुपाद आए थे 16 जनवरी, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या तारीख थी, 16 जनवरी 1967, है ना? तो 1967 को जब प्रभुपाद आए थे तो पहले से टीवी में ये समाचार जो है आया था, तो ज्ञानंद प्रभु ने भी जो है ये समाचार देखा था टीवी में, तो उन्होंने सोचा कि इन स्वामी जी से मिलूं मैं। तो इन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, तो उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से, और फिर भी इन्होंने नौकरी नहीं की, जैसे मैंने भी नौकरी नहीं की। उन्होंने भी नौकरी नहीं की और क्या करते थे, टैक्सी चलाते थे, सरल जीवन कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो इनका जो है बिल्कुल सरल जीवन था, टैक्सी चलाते थे, है ना? क्यों टैक्सी चलाते थे? क्योंकि ऊंचे दर्जे की जो है जो वो है ना, जिसको कहते हैं घोड़दौड़ या चूहा दौड़, उसमें ये जो है भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो इनको जो है मतलब ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं थी कि बहुत पैसा आए, बहुत ज्यादा इनको जो है संपन्नता प्राप्त हो, है ना? तो बिल्कुल सरल जीवन बिताते थे। और इनका नाम था जिम कोहर, जिम कोहर। तो प्रभुपाद से जब ये मिले थे तो मंदिर पहुंचे थे, तो देखा कि मंदिर में हिप्पी लोग भरे हुए हैं, मंदिर के बाहर खड़े रहे। 28 वर्ष की अवस्था थी इनकी, और प्रभुपाद के कमरे में जब प्रवेश हुए तो प्रभुपाद के पूरे प्रवचन में ये बैठे रहे, और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड जो प्रभुपाद ले गए थे भारत से, वो अभी तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 1 खंड में छपता है, लेकिन प्रभुपाद ने पहले 3 खंडों में प्रथम स्कंद छापा था अंग्रेजी में, तो प्रभुपाद लेके गए थे। तो इन्होंने प्रभुपाद से वो 3 खंड खरीदे, और प्रभुपाद ने उन पुस्तकों में अपने हस्ताक्षर किए, और क्या लिखा था, टू श्रीमान जिम कोहर, है ना? और प्रभुपाद ने अपने हस्ताक्षर किए कि मतलब ये पुस्तकें मैं श्रीमान जिम कोहर को दे रहा हूं। अब इन्होंने जो है नियमित रूप से मंदिर आना आरंभ किया, अपनी ही गाड़ी थी, अपनी टैक्सी थी, अपनी टैक्सी की जब चाहें जहां चले जाए, तो सवेरे सवेरे अपनी टैक्सी को जो है ले आते थे और सेंट फ्रांसिस के मंदिर के बाहर खड़ा कर देते थे। तो उस समय अधिकतर हिप्पी लोग सोते थे, सवेरे के कार्यक्रम में हिप्पी लोग थे। प्रभुपाद जो है उस समय इतने उदार थे कि इन लोगों का जीवन बड़ा अशुद्ध है, तो किसी प्रकार से भी लोग जो है धीरे धीरे कुछ सीखेंगे। तो प्रभुपाद बहुत धैर्य के साथ उन सबसे व्यवहार करते थे। तो जिम कुहर जो है कई बार तो प्रभुपाद के प्रवचन में अकेले श्रोता हो देते, आप सुन रहे हैं, जो फुल टाइम थे हिप्पी लोग वे सोते रहते हैं प्रवचन के समय में, और प्रभुपाद जब प्रवचन देते तो ये जो है अपने घर में उठ करके स्नान करके अपनी टैक्सी चला करके खड़े कर देते और प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए आते। तो इतना जो है इनका जो है वो था इच्छा, सुनने की इतनी इच्छा थी। और इनको अनुभव हुआ कि इनकी चेतना में गहरे हुए बहुत पुराने जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है प्रभुपाद के द्वारा मिला। और देखिए फरवरी 1967 में प्रभुपाद ने जिम को अपना शिष्य बना लिया, दीक्षा दे दी। सोचिए कितने दिन में, एक महीने में ही जो है प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दे दी। और क्या नाम दिया, जियानंद दास। एक महीने में दीक्षा दी प्रभुपाद ने। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु के भेजे हुए इस आंदोलन में जो है कुछ भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु के भेजे हुए हैं, तो उनको जो है भक्ति की जो साधना है उसको सीखने में उनको समय नहीं लगता है। तो जिम जो है मतलब जिम कुहर इसी प्रकार के कुछ थे जो कि भगवान के भेजे हुए थे, इसलिए प्रभुपाद से जैसे मिले 16 माला तुरंत जप करना शुरू कर दिया, 4 नियम का पालन करना शुरू कर दिया, सब कुछ है। तो बहुत इनको जो है आसान लगा कृष्ण भावना भावी बनना, जबकि जो फुल टाइम हिप्पी लोग थे तो वे जो है कभी इस आंदोलन को छोड़ते थे, चले जाते थे फिर आ जाते थे, और प्रभुपाद जो है बहुत धैर्य से काम लेते थे। तो वो जब आना चाहे आ जाए मंदिर में, जब जाना है चला जाए चले जाए, कुछ नियमों का पालन करते हैं फिर नियम को तोड़ देते हैं फिर पालन करते हैं फिर तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत पहले से हिप्पी लोग जो है प्रभुपाद से जुड़े हुए थे, लेकिन तो भी नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन ये जो है पहली बार ही प्रभुपाद से जुड़े और शुरू से ही जो है इन्होंने माला पर जप करना, कीर्तन में गाना, प्रसाद खाना, अर्चा विग्रहों की पूजा करना, जितने भी कार्य हैं सब सीख लिए प्रभुपाद से। और अक्सर कहा करते थे कि कृष्ण भावनामृत कितनी मधुर है, कितना आस्वादन, कितना है? इस तरह से जो है, और फिर जो है अपनी पूरी जमा पूंजी प्रभुपाद को दे दी इन्होंने, जितना भी इन्होंने इकट्ठा किया था पैसा सब प्रभुपाद को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि प्रभुपाद को जो है उस समय भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ छापना था, अंग्रेजी में उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो वो किताब छापने के लिए इन्होंने जो है अपनी सब पूंजी प्रभुपाद को दे दी, और प्रभुपाद ने उस पुस्तक के आमुख में लिखा है कि मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जियानंद ब्रह्मचारी के सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभुपाद ने धन्यवाद दिया। जियानंद प्रभु जो है देखो टैक्सी भी चलाते थे और मंदिर में भगवान की सेवा करते थे, मंदिर के लिए आवश्यक सामान खरीदना ये सब इनका भार, मंदिर के लिए सामान खरीदने का भार भी इनका है, प्रसाद बनाने का भार है, रसोई की सफाई करना इनका भार, कचरा फेंकना इनका भार, नए भक्तों को प्रशिक्षण देना इनका भार है, बल्कि भार नहीं है ये तो इनका जो है एक वो था, मतलब जिसे कहते हैं सेवा और प्रेममयी सेवा है ना। और दिन भर टैक्सी चलाने के बाद ये सब सेवाएं करते थे मंदिर की है ना। तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए जो जो सेवाएं आवश्यक हैं सब में दक्ष हो गए। श्रीला प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनकी पुस्तकों का जनता में वितरण हो, तो जयानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत की पुस्तक बेच करके इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। और दूसरे जो भक्त लोग थे वो सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे बेची जाए किताब, कैसे बेची जाए, इन्होंने बेची। चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव दिवस आया, गौर पूर्णिमा का दिन आया, तो प्रभुपाद ने देखा कि मंदिर के बाहर सड़कों पर ये अकेले कीर्तन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद देख करके बहुत प्रसन्न हुए इतना उत्साह था जयन तो होगा, अकेले कीर्तन करते थे। और इनसे फिर प्रेरणा प्राप्त की तो उसे भक्तों ने, और ज्ञान प्रभु जो है भक्तों के साथ शहर की जो ज्यादा भीड़ थी जिन सड़कों में, वहां पर नियमित रूप से कीर्तन करना शुरू किया ज्ञान प्रभु ने। इस प्रकार से जो है मतलब एक आधार तैयार किया कि दूसरे भक्त लोग भी जो है पूरे विश्व में कीर्तन करें। तो चाहे भक्त हो और चाहे बाहर के कर्मी हो, कोई भी हो, ज्ञान प्रभु से मिलकर के उनसे तुरंत आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि शुद्धता ही शक्ति है, प्योरिटी इज फोर्स। एक बार इन्होंने प्रभुपाद को हार पहनाया। अब देखो टैक्सी चला के आए थे है ना, तो पूरे कपड़ों में क्या थी, ग्रीस लगी थी। ड्राइवर गाड़ी का ड्राइवर होता है तो कई बार गाड़ी को जो है ठीक करने में उनको जो है पूरे सब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो सब कपड़े गंदे थे है ना। और ऐसे में जो है टैक्सी चला के आए और बहुत बढ़िया माला खरीदी प्रभुपाद के लिए और प्रभुपाद को पहनाए माला। तो प्रभुपाद को माला पहना करके इनको लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया कि मेरे तो बहुत गंदे कपड़े हैं, तो क्षमा मांगी कि मेरे अपराध के लिए क्षमा करिए कि मैं आपको माला पहना रहा हूं जबकि मैं बहुत गंदे कपड़े पहना हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि बिल्कुल अपराध नहीं है, तुम गंदे हो सकते हो लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। हरि बोल। प्रभुपाद ने कहा कि तुम गंदे हो सकते हो लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तो ज्ञान प्रभु जो है हर व्यक्ति के हृदय को छू लेते थे और हर व्यक्ति से सेवा ले लेते थे, कुछ न कुछ सेवा करा लेते थे। प्रत्येक वस्तु को या तो फ्री में ले लेते थे या फिर पैसे छुड़वा देते थे उसे, मतलब कम पैसे में खरीदते थे। जो दुकानदार हैं या प्रशासन के अधिकारी हों या शराबी हों या नशेड़ी हों, सबके मित्र थे जियानंद प्रभु। सभी जियानंद प्रभु से प्रेम करते थे और सबको जियान प्रभु ने भगवान की सेवा में लगाया। सबसे ज्यादा परिश्रम करते थे परंतु अन्य सभी की सेवाओं की प्रशंसा भी करते थे, अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। अगर कोई उनकी प्रशंसा करे तो वो चले जाते थे, इसलिए कोई भी भक्त जो है ना मतलब डरता था कि अगर मैं इनकी प्रशंसा करूंगा तो चले जाएंगे इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे। बहुत विनम्र थे, सहनशील थे, कृपालु थे, विरक्त थे। उनके कार्य, उनके शब्द, उनका जीवन, उनकी मृत्यु, सब कुछ क्या है, सराहनीय है। ज्ञान प्रभु प्रभुपाद के आदेश का पालन करने में बहुत तल्लीन रहते थे कि उन्हें समय नहीं मिलता था कि प्रभुपाद से मिलें। बार बार प्रभुपाद उनके विषय में पूछते हैं, देखो कैसे जो दूसरे भक्त हैं जहाँ प्रभुपाद जाएं तो प्रभुपाद के पीछे भी चलते थे, लेकिन प्रभुपाद क्या पूछते थे, जयानंद कहाँ है। जयानंद को जो है समय नहीं मिलता था प्रभुपाद से मिलने का, लेकिन प्रभुपाद जो है बार बार जयानंद को पूछते कि जयानंद कहाँ है, जयानंद कहाँ है, क्योंकि वो सेवा में इतने लगे रहते थे। फिर यही जो है सन 1967 का सन था, 9 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा निकली भारत से बाहर, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी। तो जयानंद प्रभु ने बहुत परिश्रम करके रथ यात्रा निकाली। अब जयानंद प्रभु को तो कुछ भी आइडिया ही नहीं था कि रथ कैसे बनना है, कैसे रथ यात्रा होती है, लेकिन गाड़ी में जो है एक ट्रक ट्रक में जो है जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को रख करके और इन्होंने जयानंद प्रभु ने रथ यात्रा का आयोजन किया, सबसे पहली रथ यात्रा। सोचिए तो जयानंद प्रभु का कितना बड़ा योगदान है कि भारत से बाहर सबसे पहली रथ यात्रा 1967 में निकली है ना, 9 जुलाई को भारत के बाहर इतिहास में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकली, केवल जयानंद प्रभु के खून पसीने और कड़ी मेहनत के कारण। और हर वर्ष जयानंद प्रभु जो है रथ यात्रा के लिए धन इकट्ठा करते थे, सरकारी अनुमति लेते थे और लोगों को प्रचार करते थे, बड़े बड़े रथ बनाते थे, नगर की पुलिस और US पार्क सेवा दल के लोगों के लिए भी स्वयं प्रसाद बना करके इस उत्सव को और अच्छा करते, सुधारते थे। और जैसे जैसे रथ यात्रा की तारीख निकट आती थी तो अपनी नींद को भी भूल जाते थे, रथ बनाना है ना। पर इस पहले साल तो ट्रक में ही जो है उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे उनको पता चला कि रथ कैसा होना चाहिए तो रथ जो है बनाते थे। प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लोग जो है रथ यात्रा में जुड़ते गए और प्रभुपाद जो है ज्ञानंद प्रभु के बहुत आभारी थे। प्रभुपाद ने जो है ज्ञानंद के तेरह भाव के बाद ये भी कहा कि प्रत्येक रथ यात्रा के दौरान किसी एक रथ पर उनका चित्र रखा जाना चाहिए, प्रभुपाद ने भी कहा था। और अब 1976 इस प्रकार से 10 साल हो गए, 1967 में ये प्रभुपाद से जुड़े थे, अब 1976 का समय आ गया। तो उस समय जो है ये रथ न्यूयॉर्क में रथ की तैयारी कर रहे थे, रथ बना रहे थे, तो उस समय जो है पता चला कि उनके शरीर में एक गांठ है जो बहुत दर्द दे रही है, और फिर लगा कि कैंसर की गांठ हो सकती है। लेकिन ज्ञानंद प्रभु ने अपने गुरु भाई से वचन लिया कि जब तक रथ यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक प्रभुपाद को ना बताना मेरी इस गांठ के बारे में, प्रभुपाद को ना बताना, क्योंकि ये सेवा करना चाहते थे, है ना। तो इस तरह से न्यूयॉर्क की रथ यात्रा तो बहुत सफल हुई और बहुत लोग जो है इसमें प्रेरित हुए और बहुत लोगों ने भाग लिया, और जयानंद को जो है प्रभुपाद ने बहुत धन्यवाद दिया। और फिर आगे चल करके ये जो है अस्पताल में भर्ती हो गई, अब अस्पताल में भर्ती हो गई, लेकिन शरीर तो छोड़ना निश्चित था इनका, लेकिन उस समय भी ये जो है अस्पताल में डॉक्टरों नर्सों और रोगियों को कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते रहते थे। सोचिए, हरिओ अस्पताल में भर्ती थे, है ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने 1 मई 1970 को ज्ञानंद प्रभु ने अपना शरीर छोड़ा था, लेकिन तिथि के अनुसार वो कौन सी तिथि है, आज की तिथि है वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, है ना। तो 1970 में 1 मई को वो पड़ी थी और आज कितनी है, 12 तारीख है। तो इस तरह से उन्होंने जो है आज के दिन शरीर छोड़ा, तो हमें जो है ज्ञानंद प्रभु से कृपा मांगनी चाहिए। आज के दिन ऐसे वैष्णवों की कृपा का द्वार खुला रहता है कि हम डायरेक्ट ऐसे वैष्णवों की कृपा मांग सकते हैं जिन्होंने मतलब जीना और मरना दोनों सिखाया। उनका जीना भी बहुत दिव्य था और मरना भी बहुत दिव्य था, है ना। तो अब हम जो है ये सुनेंगे नरसिंह भगवान की जो कथा है, तो नरसिंह भगवान की जो कथा है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इस कथा का बहुत विस्तार से वर्णन है। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में आप समझिए कि 15 अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में 15 अध्याय हैं, लेकिन जहाँ तक 13 अध्याय तक शुरू से लेकर के अध्याय 13 तक, 13 अध्याय या 12 अध्याय ये इसी कथा में प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है और नरसिंह भगवान का चरित्र है और हिरण्यकशिपु का जो चरित्र है उसी का ही वर्णन आता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध महाराज जो कथा सुन रहे हैं, जिनके कारण ही सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया, तो वो परीक्षित महाराज का प्रश्न था। परीक्षित महाराज ने कुछ ऐसे प्रश्न किए कि सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को विस्तार से सुनाया। अगर परीक्षित महाराज प्रश्न ना करें तो सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ जाएं, संक्षेप में उस बात को कह करके आगे बढ़ सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न ये किया था कि विद्वेषो दैते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि, कि अपने प्रिय पुत्र में और महात्मा भी था, जो पुत्र अपने को भी प्रिय हो और महात्मा भी हो, तो ऐसे पुत्र से उसको विद्वेष कैसे हुआ, हिरण्यकशिपु को द्वेष कैसे हुआ अपने ही पुत्र, और पुत्र भी कैसा जो महात्मा हो, किसी प्रकार का विरोध ना करे, उसमें सहनशीलता उदारता सब प्रकार के गुण। तो हिरण्यकशिपु का सबसे पहला जो है जो द्वेष है प्रहलाद महाराज से अपने पुत्र के प्रति कैसे हुआ, एक तो ये है, और दूसरा है ब्रोह में भगवान ये प्रहलाद से अच्युतात्मता, और दूसरा प्रश्न ये था कि प्रहलाद जो असुरों के वंश में पैदा हुआ उस बालक को जो है अच्युतात्मता कैसे आई, अच्युत आत्मता यानी कृष्ण भावना, कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति कैसे हुई? प्रहलाद एक छोटे से बालक को कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति कैसे हुई? तो दो प्रश्न है ना। तो हिरण्यकश्यप को अपने प्रिय पुत्र के प्रति द्वेष कैसे हुआ, ये पहला प्रश्न है ना। और दूसरा प्रश्न क्या कि प्रहलाद महाराज कैसे कृष्ण भावना भावित बने। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, किस तरह से देते हैं कि चूंकि हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु से द्वेष था, इसलिए अपने पुत्र से भी द्वेष हो गया, ठीक है ना। क्योंकि विष्णु से द्वेष है तो विष्णु का अगर भक्त कोई बन जाए तो स्वाभाविक है, कि असुर जो है वो भक्त से द्वेष करेगा। तो ये तो मतलब कारण था कि प्रहलाद से द्वेष कैसे हुआ। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु से द्वेष कैसे हुआ। सुने सब लोग, हिरण्यकश्यपु का भगवान विष्णु से द्वेष कैसे हुआ? तो इसका कारण बताते हैं कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। आप समझ रहे, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्यकश्यपु का भाई था। तो अब हिरण्यकश्यपु के पास बोलने की बहुत कला थी, उसके पास बोलने की बहुत कला थी, और इस कला के द्वारा वो बहुत जो है बड़ा उसने यूनियन बना लिया, सब असुरों को अपने पक्ष में कर लिया। तो किसी के पास बोलने की अगर कला होती है तो वो जो है सही को गलत और गलत को सही बना करके लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। तो हिरण्यकश्यप के अंदर ऐसी बुद्धि थी। आजकल भी ऐसी हो रहा है, असुरों के पास बोलने की कला है, ईश्वर को निराकार सिद्ध कर देते हैं, ईश्वर है ही नहीं, है ना। तो लोग वो जैसा बोलते हैं वैसे लोग सोचते हैं कि हाँ यही सही है, है ना। तो अपनी कला का इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से शत्रुता का संबंध स्थापित किया, है ना। और कारण क्या था? भाई का वध किया, मेरे भाई का वध किया, है ना। अब मेरा भाई चाहे जितना भी गलत हो लेकिन वो सही है, क्योंकि मेरा भाई है। असुरों का ये सिद्धांत होता है, है कि मैं चाहे जितना गलत काम करूं लेकिन मैं सही हूं, क्योंकि मैं हूं, मैं जो है ना। तो ये उनके अंदर ये भाव रहता है, है कि जो कुछ भी मैं कहूं, जो कुछ मैं करूं वो सही है, और बाकी सब अगर शास्त्र विरोध करते हैं तो शास्त्र गलत हैं, साधु विरोध करते हैं तो साधु गलत हैं, भगवान विरोध करते हैं तो भगवान गलत हैं, मेरा विरोध कैसे करते हैं। तो इस असुरी सिद्धांत होता है। तो इस तरह से उसने जो है विष्णु का जो है दोष बताया है, उसने असुरों को जो है इस तरह से ब्रेन वॉशिंग किया। क्या कहा? कि विष्णु जो है पहले तो बहुत अच्छे थे, पहले तो अच्छे थे, उनका जो है समानता का व्यवहार था असुरों के साथ और देवताओं के साथ, लेकिन अब विष्णु जो है पक्षपाती हो गए हैं। अब विष्णु के अंदर पक्षपात आ गया है, देवताओं का पक्ष लेते हैं, देवताओं का पक्ष लिया और मेरे भाई को मार डाला है। विष्णु ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, समता का स्वभाव छोड़ दिया, अब विष्णु के अंदर बहुत दोष आ गए हैं, मतलब बिगड़ गए भगवान अब बिगड़ गए हैं, है? उनके अंदर दोष आ गया है, है? और माया से सुकर का रूप धारण किया मेरे भाई को मारने के लिए। विष्णु जो है माया का प्रयोग किया, मेरा भाई तो माया का प्रयोग नहीं करता था, माया से कोई अन्य रूप नहीं धारण किया, है? अब मेरा लक्ष्य यही है कि शूल से विष्णु का सिर काट करके उनके खून से अपने भाई का तर्पण करूं, उसकी इच्छा है ना। असुर असुर है, वो नहीं सोचते हैं कि भगवान का शरीर कैसा होता है, भगवान का शरीर तो दिव्य है, भौतिक थोड़ी है, है ना। ना तो आग से जलाया जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ऐसी हमारी आत्मा है, है? तो भगवान का तो पूरा शरीर भी उसी प्रकार का है, आध्यात्मिक है। तो वो सोचता है, है? और विष्णु को मारने से, विष्णु को अगर मैं नष्ट कर दूंगा तो क्या होगा, देवता भी नष्ट हो जाएंगे, देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप का क्या विचार है कि विष्णु को अगर मैं नष्ट कर दूंगा तो देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे, जैसे वृक्ष की जड़ कट जाए तो शाखाएं पत्तियां सब सूख जाएंगी। तो एकमात्र विष्णु हाँ, को अगर मैं नष्ट कर दूं तो देवता लोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये विचार नहीं किया कि अगर विष्णु अगर नहीं रहेंगे तो असुर कहाँ रहेंगे। असुर हैं, देवता हैं, पूरी सृष्टि तो है ना विष्णु पर टिकी है। अगर विष्णु नहीं रहे तो असुरों असुरों की स्थिति, असुरों का जीवन कैसे रहेगा, है ना। तो ये असुर लोग हैं, है ना, विचार नहीं करते। और फिर हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि पृथ्वी में जितने लोग तपस्या, स्वाध्याय और यज्ञ में लगे हैं उनको ही नष्ट करो। क्या पृथ्वी में जितने लोग तपस्या, स्वाध्याय और यज्ञ करने में लगे हुए हैं उनको नष्ट करो, क्योंकि देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु की जड़ क्या है, तपस्या, स्वाध्याय और यज्ञ, समझ रहे। तो जो लोग तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ में लगे हैं उनको नष्ट करेंगे तो विष्णु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विष्णु की जड़ यह है। और विष्णु नष्ट हो जाएंगे तो सब देवता नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की जड़ विष्णु है। लेकिन क्या ऐसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विष्णु की जड़ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ है या विष्णु है जड़। विष्णु है जड़ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ की, है ना। तो वो उल्टा सोचते हैं, है ना। तो विष्णु है जड़ हर चीज की, और वो जड़ विष्णु कैसे हैं, अविनाशी हैं, नष्ट नहीं हो सकते, है ना। तो वो जो है मतलब असुर, असुर मूर्खता के कारण जो है सही को गलत, गलत को सही सोचते हैं, जिस तरह से उसने जो है मतलब सोचता है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब मुझे क्या बनना है। हिरण्यकश्यप अब अपने लिए विचार कर रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बनना है अजेय, अजर, अमर, अप्रतिद्वंद और एक राज। ये चार चीजें हैं, पांच पांच बातें जो है वो चाहता है कि मैं मतलब करूंगा। पहला क्या बनूं, अजेय, मतलब कोई जीत ना पाए। फिर अजर, अजर मतलब बुढ़ापन आए। तीसरा अमर, मतलब मृत्यु ना आए। चौथा अप्रतिद्वंद, हाँ कोई विरोधी है, किसी की विरोध, किसी की हिम्मत ना हो विरोध करने की। और पांचवा एक राज, एकमात्र मेरा शासन, एकमात्र मेरा शासन, पूरी सृष्टि में मेरा शासन एकमात्र हो, ये है। और फिर उसने क्या माना कि ब्रह्मा जी ही परम पुरुष हैं, सर्वोच्च कौन है, ब्रह्मा जी। उसने माना कि ब्रह्मा जी जो है परम पुरुष हैं, और वे बने कैसे, सर्वोच्च पद उनको कैसे प्राप्त हुआ, अपनी तपस्या समाधि से वो ईश्वर बन गए। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी अपनी तपस्या समाधि से ईश्वर बन गए, तो इस तरह से मैं भी जो है अपनी तपस्या समाधि से ब्रह्मा का पद पा सकता हूं। लेकिन गलत है ना, कि ब्रह्मा जी अपनी तपस्या समाधि से नहीं बने, तपस्या समाधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने फिर उनको शक्ति दी, है कि नहीं। लेकिन असुर है, असुर क्या सोचते हैं, अपनी तपस्या समाधि से मैं स्वयं बन जाऊंगा, मतलब कोई ईश्वर है ही नहीं, है ना। तो ये जो है मतलब एक अज्ञान है। तो उसने ब्रह्मा जी को माना कि भाई सब सर्वोच्च पद में है, और वही जो है मतलब उन्होंने अपने शक्ति से, अपनी तपस्या समाधि से उन्होंने ये पद पाया है, सर्वोच्च पद पाया है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा का पद प्राप्त करूंगा। अब ब्रह्मा का पद मैं प्राप्त करूंगा, है ना, अपनी कठोर तपस्या से। और फिर क्या करूंगा कि पुण्य और पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा, समझ रहे। हिरण्यकश्यप ने क्या, मैं जो है अपनी तपस्या समाधि से ब्रह्मा का पद पालूंगा, और सब कुछ जो है मतलब मेरे नियंत्रण में हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, सब उल्टा कर दूंगा नियम, है जो पाप करने वाले हैं वो जाएंगे स्वर्ग में, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा जो करते हैं वो सब स्वर्ग जाएंगे, है? और ये हरे कृष्ण वाले सब नरक में जाएंगे। जो हरे कृष्ण का जाप करते हैं इन सबको नरक में भेजूंगा, मेरा जो है मतलब इस तरह से नियंत्रण हो जाएगा, है ना। तो ये जो है मतलब उसने सोचा था, और क्या माना था कि वो ब्रह्मा का पद नित्य है, ब्रह्मा का पद नित्य है, मैं वो पद प्राप्त हूं, और वैकुंठ का पद अनित्य है। ये जो है उसका सिद्धांत था। तो मंदिर पर्वत में जाकर के बहुत भयानक तपस्या की, हाथों को ऊपर उठा करके, ऊर्ध बाहु नभो दृष्टि, क्या समझे, ऊर्ध बाहु और नभो दृष्टि मतलब हाँ आकाश की ओर देखता हुआ, हाथ ऊपर उठा करके आकाश की ओर देखता हुआ, नभो दृष्टि और पादंगुष्ठाश्रता बनी और पैर के अंगूठों के ऊपर के बल पर खड़ा, पैर के दो अंगूठे है ना, एक अंगूठा एक पैर का दूसरा, तो पैर के दो अंगूठों के ऊपर खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर उठा करके और आकाश की ओर देखते हुए उसने जो है मतलब तपस्या की है। और जटाओं से प्रलयकालीन सूर्य का तेज निकलने लगा, उसका शरीर मिट गया, खून और मांस दीमक ने खा लिया, हड्डियां केवल शेष रही। देवताओं ने सोचा हाँ ये नष्ट हो गया, देवताओं ने क्या सोचा, ये नष्ट हो गया, असुरों पर आक्रमण कर दिया, असुर सब घर छोड़ के भागे, हिरण्यकश्यप का महल लूट लिया देवताओं ने और पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। हाँ, और कयाधु जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो नारद जी ने देखा रास्ते में इंद्र जो है क्या कर रहा है, ये तो पराई स्त्री के साथ अत्याचार कर रहा है। नारद जी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम देवता होकर के, देवताओं के राजा होकर के ये क्या कर रहे हो। तो नारद तो उसने कहा कि मैं तो छोड़ दूंगा, इंद्र ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा सुरक्षित, जब ये पुत्र को जन्म देगी तो पुत्र को नष्ट कर दूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा, ये माता को जो है मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने कहा। तो नारद जी कहते हैं कि इसकी गर्भ में जो बालक है तुम उसको असुर समझ रहे हो, असुर नहीं है वो, बहुत बड़ा भक्त है और उसका कुछ संसार की कोई शक्ति उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती, तुम यदि अपनी अपना अपनी सुरक्षा चाहते हो तो इस माता को प्रणाम करो, क्षमा मांगो और जाओ। तो नारद जी के आदेश से इंद्र ने कयाधु को प्रणाम किया और क्षमा मांगी और चला गया। और नारद जी ने कहा कि तुम जो है अब मेरे आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारा पति नहीं आता तपस्या करके तुम मेरे आश्रम में सुरक्षित रहो। तो कयाधु जो है नारद जी के आश्रम में रही, कब तक, जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके नहीं आ गया। अब जो है नारद जी कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं माता को निमित्त बना करके, लेकिन उपदेश किसको दे रहे हैं, बालक को। नारद जी समझ रहे हैं कि जो भक्ति को प्राप्त करने का जो पात्र है, असली उचित पात्र है, वो गर्भ के अंदर है बालक। तो बालक को उपदेश देते हैं, माता को निमित्त बना करके उपदेश देते हैं, और कब तक, 100 दिव्य वर्षों तक, 100 दिव्य वर्ष देवताओं के 100 साल मतलब इस पृथ्वी के 36,000 साल, 360 से गुणा करने से जो है वो पृथ्वी के वर्ष बनते हैं, देवताओं के वर्षों में 360 का गुणा करने से है ना। तो 100 देवताओं के वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। तो सोचिए कि प्रहलाद महाराज गर्भ में रहे, कयाधु ने जन्म नहीं दिया बच्चे को डर के मारे कि इंद्र कहीं बच्चे को, बच्चे का अनिष्ट ना कर दे। इंद्र में भी जो है मतलब ये चेतना थी कि गर्भवती माता को जो है मतलब गर्भ हत्या नहीं करना है ना। आजकल गर्भ हत्या कितनी हो रही है। तो अच्छा फिर क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु के सिर से अग्नि निकली, आकाश में फैल गई, नदियां समुद्र क्षुब्ध हो गए, पृथ्वी पर्वतों सहित हिलने लगी, सब देवता तप्त हो गए, स्वर्ग से देवता ब्रह्मलोक गए और उसकी तपस्या से देवताओं ने कहा कि अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। स्वर्ग में भी क्या हो रहा है, हाँ अग्नि का तेज स्वर्ग में भी रहे, तो उसकी तपस्या रोकिए, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी और आपका पद अगर उसने प्राप्त कर लिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कौन कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, पता नहीं कहाँ पर है वो, क्योंकि उसका शरीर तो जो है बिल्कुल वृक्ष है और मिट्टी है, वहां पर जो है मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे बादलों में छिपा हुआ सूर्य है, तो रोशनी तो आती है लेकिन सूर्य की स्थिति पता नहीं चलती कि सूर्य कहाँ पर है, लेकिन रोशनी तो है सूर्य की। उसी प्रकार से उसका तेज, उसकी तपस्या तेज तो जो है स्वर्ग तक पहुंच रहा है, लेकिन वो कहाँ पर है वो पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी जब आए तो संसार को तपा रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने फिर कमंडलू का जल छिड़का, उसका शरीर और भी पुष्ट हो गया, जबकि शरीर बिल्कुल नष्ट हो चुका था ना उसका। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो उसका शरीर बिल्कुल पुष्ट हो गया और कठोर हो गया, और उसने जो है स्तुति की है। और आप ब्रह्मा जी को आदि पुरुष कहकर के स्तुति कर रहा है, आप आदि पुरुष हैं, जैसे हम लोग गोविंदम आदि पुरुषम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की स्तुति करता है कि ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं इस तरह से, और आपका पद कोई नहीं पा सकता है। अब देखो ब्रह्मा जी गए तो पद पाना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए तो शिष्टाचार के नाते क्या करे, आपका पद कोई नहीं पा सकता। आप कैसे कहें कि मुझे आपका पद चाहिए है? और मैं पाप पुण्य के नियमों को उलट पुलट दूंगा है? तो उसने जो है मतलब फिर 13 वरदान मांगे, इनको आप सुनिए, हिरण्यकश्यप ने 14 वरदान मांगे, तो इनको जरा आप सुनिए ध्यान से। पहला क्या था, न भूतेभ्यस तद सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। सबसे पहला वरदान क्या मांगा कि आप किस सृष्टि में जितने भी प्राणी पैदा हुए जो आपने बनाए हैं, 84 लाख योनियों के हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो उनमें से कोई भी मेरी हत्या ना कर पाए, पहला वरदान। दूसरा वरदान, घर के अंदर भी ना मरूं। तीसरा वरदान, घर के बाहर ना मरूं। चौथा वरदान, दिन में ना मरूं। पांचवा, रात में ना मरूं। छठा, भूमि में ना मरूं। सातवां, आकाश में ना मरूं। आठवां, किसी मनुष्य से ना मरूं। नवा, किसी पशु से ना मरूं। दसवां, किसी निर्जीव वस्तु से भी ना मरूं। मतलब पशु ना, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, लेकिन कोई तलवार है किसी चीज से मर सकता हूं ना, तो निर्जीव वस्तु से भी ना मरूं, ये दसवां था। ग्यारहवां, किसी सजीव वस्तु से भी ना मरूं। बारहवां, देवताओं से ना मरूं। तेरहवां, असुर से ना मरूं। चौदहवां, महासर्पों से ना मरूं। अब देखिए 36,000 साल तक तपस्या करके उसने ये सब वरदान मांग लिए है ना, लेकिन उसका फल कितना मिला उसको, क्योंकि उसने ये वरदान मांग लिया 36,000 साल तक तपस्या करके उसने वरदान मांग लिया, उसके बाद जब आया वो है, तब उसकी पत्नी ने कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया, और जब प्रहलाद 5 वर्ष के थे उसी में ही फिर वो भगवान के हाथों मारा गया। इसका मतलब क्या है, 36,000 साल तक तपस्या की, उसका फल कितना भोगा उसने, 5 साल। तो भगवान के विरुद्ध जो है अगर कोई कार्य करता है तो क्या होता है कि अगर परिश्रम ही परिश्रम मिलता है, कुछ भी फायदा नहीं, और मृत्यु के बाद फिर वो वरदान थोड़ी रहेगा, आप समझ रहे, मृत्यु के बाद उसको दूसरा जन्म प्राप्त होगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो वरदान थोड़ी उसको उसके पास रहेगा, और ना उसको कुछ याद रहेगा कि मैंने वरदान पाया था, ना उसे कुछ याद रहेगा। देखो कितना मतलब खराब स्थिति है, भगवान के विरुद्ध हर कोई व्यक्ति प्रयास करे। तो ब्रह्मा जी बोले ये सभी वरदान अत्यंत दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। अब उसने अपने भाई का, भाई के व्रत का स्मरण करते हुए भगवान से द्वेष अब शुरू किया, असली द्वेष अब शुरू किया है। इंद्र के महल पर अधिकार कर लिया, इंद्र के महल पर अधिकार कर लिया, और अब प्रहलाद का जन्म भी हुआ जैसा हमने बताया, और प्रहलाद जो है अब 5 वर्ष की अवस्था के हो गए, तो संड और अमर के घर में भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संड और अमर के घर में भेजा। संड और अमर कौन है, शुक्राचार्य के पुत्र हैं, शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप के गुरु हैं। तो संड और अमर के ये कौन हुए, शुक्राचार्य के गुरु पुत्र, गुरु के पुत्र है ना। तो प्रहलाद जी को कहाँ भेजा, हाँ गुरु पुत्रों के जो है घर में भेजा। अच्छा दूसरी बात और भी है कि शुक्राचार्य जी नहीं है, शुक्राचार्य जी है ही नहीं घर में, और शुक्राचार्य जी रहे ही नहीं, मतलब जब तक हिरण्यकश्यप की मृत्यु नहीं हो गई तब तक शुक्राचार्य जी आए ही नहीं। अब जो भी हो, शुक्राचार्य जी पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो शुक्राचार्य थे नहीं है ना। तो सन और अमर के पास भेजा। हाँ अच्छा, तो जो सन और अमर के असुर बालकों को शिक्षा देते थे, असुर बालकों को शिक्षा देते थे, तो सब यही आसुरी शिक्षा देते थे, असुरों के सिद्धांत जिसमें कि धर्म का जो पालन करना है वो अर्थ धन की प्राप्ति के लिए, और धन की जो प्राप्ति होती है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये सब जो है आसुरी शिक्षाएं। तो प्रहलाद जी को जो है ये शिक्षाएं पसंद नहीं आती थी, है ना, क्योंकि वे नारद जी की शिक्षाएं प्राप्त कर चुके हैं और समझ रहे कितने दिन तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की नारद जी की, 36,000 साल तक। जो 36,000 साल तक नारद जी की दिव्य शिक्षाएं प्राप्त कर ले, उसको असुरों की शिक्षाएं कैसी लगेंगी, है ना। लेकिन ये विरोध तो नहीं कर सकते थे, 5 वर्ष का बालक है ना, तो विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शिक्षाएं अंदर से इनको पसंद नहीं थी। लेकिन सन और अमर्क ये नहीं पहचान पाए, ये नहीं पहचान पाए कि ये बालक कितना आगे बढ़ा हुआ है दूसरी दिशा में, सन अमर्क नहीं पहचान पाए, है ना। तो एक दिन जो हिरण्यकश्यप ने गोद में लिया और प्रहलाद से पूछा, अप्रच्छ कथिताम वत्स मन्नते साधु यद भगवान, कि हे वत्स, हे बच्चे, तुम जो है बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात, कौन सी शिक्षा तुम्हें अच्छी लगी, हिरण्यकश्यप ने पूछा, है ना। तो प्रहलाद का जो भाव था कि हृदय के अंदर की बात पूछ रहे हैं, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्र ने दिया मसुद हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गरिम आश्रयित है। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छा क्या अच्छा लगता है, तो क्या कहा कि मुझे तो अच्छा यही लगता है कि हे असुरराज, ये जो घर है अंधेरे कुएं के समान, इसको त्याग करके वन में जाए और हरि का आश्रय ले, हरि की शरण ले, प्रहलाद ने कहा, है ना। तो इससे जो है उसको गुस्सा नहीं आया, हिरण्यकश्यप को तो गुस्सा आना चाहिए है? कि ये हरि के पक्ष में, विष्णु के पक्ष में ये ऐसी बात क्यों बोला, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया, प्रहलाद के ऊपर गुस्सा नहीं आया है? बल्कि वो हंसा और क्या बोला, बालक की बुद्धि शत्रुओं द्वारा बदल जाती है, उसको पता नहीं था कि ये हिरण्यकश्यप 5 साल का बालक नहीं है, है? कितनी उम्र है उसकी, 36,000 साल की उम्र है, है? तो उसने कहा, हंसने लगा हिरण्यकश्यप, हंसने से लगा कि प्रहलाद को मतलब डर ना पैदा हो, प्रहलाद को कुछ कष्ट ना पैदा हो, है? तो इसलिए हंस करके उसने क्या कहा कि शत्रुओं द्वारा जो है बालक की बुद्धि अगर बदल जाती है तो बालक का क्या दोष है, हिरण्यकश्यप बोला। और फिर जो गुरु थे सन और अमर्क, बालक के गुरु थे, उनको कहा, सम्यक विधार्यताम बालो विष्णु पक्ष है प्रतिच्छन्न न भिद्यता से धीर्य था, कि इस बालक को जो है अच्छी प्रकार से आप ट्रेनिंग दो, किस विषय में, असुरों की शिक्षा में अच्छी प्रकार ट्रेनिंग दो, अच्छा असुर बनाओ इस बालक को, और ध्यान रखो कि विष्णु के जो पक्ष में रहने वाले जो लोग होते हैं, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, तो वे यहाँ पर इस बालक को बिगाड़ ना पाए, इस्कॉन के जो डिवोटी हैं, तो ये लोग बड़े चालाक होते हैं, असुरों की वेशभूषा में आते हैं और लोगों को जो है बिगाड़ देते हैं, तो इनको जो है इस्कॉन के डिवोटी से थोड़ा सा बचा करके रखना, बहुत निगरानी रखना कि कोई इस्कॉन का डिवोटी ना आए यहाँ पर। तो शिक्षक जो है सन अमर प्रहलाद को लाए अपने घर में, अब बड़ी लज्जा की बात थी शिक्षकों की, बड़ी लज्जा की बात थी कि उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जो है असुरों की शिक्षा में पूरी तरह निपुण हो गया है, तो ले आए थे कि हमने इसको सिखाया और इसने जो है मतलब बिल्कुल उल्टा बोल दिया, तो अब जो है शिक्षक लोग जो है अपने घर में लाए बालक को, और फिर इसने से पूछा कि हे बालक, हे प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धि इतनी कैसे बिगड़ गई, ये सब जितने भी बच्चे हैं, हमने तो सब बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी और बढ़िया शिक्षा दी। कैसी शिक्षा दी? असुरों की शिक्षा दी। और तुम्हारी बुद्धि जो है इतनी कैसे बिगड़ गई? भड़ास से पूछा। क्यों उन्होंने पूछा? सन और अमरक ने पूछा, है ना। तो क्या प्रहलाद बताते हैं ऐसे में? क्या प्रहलाद जी को बताना चाहिए कि हाँ नारद जी ने मुझे सिखाया? ऐसे में क्या बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, है ना, क्योंकि उल्टा प्रश्न पूछ रहा है। उनका कहना है कि किसने तुमको बिगाड़ा, है ना। जब प्रश्न ही गलत है तो उत्तर थोड़ी दिया जाएगा। उत्तर अगर देंगे तो उत्तर भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि नारद जी ने, बल्कि प्रहलाद हंसे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बात पर हंसा था, है ना। अब प्रहलाद शिक्षकों की बात पर हंसे। हंस करके उन्होंने बोले, भाई बोले यदि आप ऐसा ही मानते हैं कि मेरी बुद्धि बिगड़ी है, तो भगवान चक्रधारी अपनी इच्छा से मेरी बुद्धि को इसी प्रकार से बना रहे हैं, और वही जो है सबके हृदय में है, सबकी बुद्धि में वही बैठे। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया कि सीधा उत्तर नहीं दिया, है ना, इस तरह से उत्तर दिया। तो ये तो राजा के सेवक थे, डरे हुए थे। हिरण्यकश्यप का बड़ा आतंक था कि हमारे बच्चे को जो है मतलब बिगाड़ना नहीं है, हमारे बच्चे को असुर बनाना है। तो वो तो जो है डरे हुए थे, तो जो है वो कुपित हो गए। अरे लाओ बैंत, ये चौथा उपाय दंड ही उचित है इस बालक के लिए, क्योंकि सिखाने से मानता नहीं, सिखाने से सीखता नहीं। साम साम नीति यहाँ पर मतलब सफल नहीं हो रही है ना। और दाम दाम का मतलब है लोभ दिखाए जाए कुछ पुरस्कार, तो उसका भी जो है कुछ फायदा नहीं है। साम दाम और भेद नीति, भेद नीति अगर शत्रुओं में भेद पैदा किया जाए, तो अकेला प्रहलाद है तो हम भेद नीति भी सफल नहीं। तो केवल दंड है, अब इसको केवल दंड से ही सुधारना पड़ेगा। क्षण उमर इस प्रकार से प्रहलाद के बारे में बोले, और क्या बोल रहे हैं? दैते चंदन मने जातो यम कंटक द्रुमहा। प्रहलाद की निंदा करते हुए क्या कहते हैं कि असुरों का जो वंश है वो चंदन का जंगल है। असुरों का जो परिवार है ये चंदन का जंगल है, जिसमें चंदन ही चंदन के पेड़ उगे हो हैं सब असुर, और इनमें जो है एक कांटे का पेड़ पैदा हुआ है। कौन है ये? प्रहलाद। एक कांटे का पेड़ पैदा हुआ है और ये बहुत खतरनाक है। चंदन के जंगल में एक कांटे का पेड़ अगर पैदा हो जाए तो पूरे जंगल के लिए, चंदन के वृक्षों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है? यन मूलोन मूल परसो विष्णुर नालाय तुर्भकहा, कि जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी से चंदन का पेड़ काटा जाता है ना, कुल्हाड़ी से चंदन का पेड़ काटा जाता है। लेकिन कुल्हाड़ी को चाहिए हत्था, कुल्हाड़ी को हत्था चाहिए, तो चंदन की लकड़ी का हत्था नहीं काम करेगा। कुल्हाड़ी में चंदन की लकड़ी का हत्था काम नहीं करेगा, कांटे के पेड़ की लकड़ी का ही हत्था मजबूत होता है। तो ये कांटे का जो पेड़ है ये जो है हत्था बनेगा। किसका हत्था बनेगा? विष्णु रूपी कुल्हाड़ी का। विष्णु है कुल्हाड़ी जो असुरों को जो है मतलब पूरे जंगल को काटने, लेकिन चाहिए हत्था ना। कुल्हाड़ी जो है बिना हत्था के तो नहीं काट सकती है। तो विष्णु जो कुल्हाड़ी है पूरे असुरों के वंश को नष्ट करने के लिए, लेकिन ये जो है कांटे का जो पेड़ बना है ये जो है सहायता करेगा उस कुल्हाड़ी की, हत्था देगा। तो प्रहलाद की जो है इस तरह से निंदा कर रहे हैं। फिर धर्म अर्थ काम की शिक्षा दी कि सीख, तू सीख, सही शिक्षा सीख, ये उल्टी शिक्षा क्यों तूने सीखी है? तो जो है बलपूर्वक वो असुरों की शिक्षा फिर देने लगे। और प्रहलाद जो है बेचारे छोटे बालक हैं तो कुछ विरोध कर नहीं सकते। तो असुरों ने, ये सन नंबर ने क्या सोचा कि अब तो प्रहलाद सीख गया है, अब उनको फिर लगा कि अब तो सीख गया, क्योंकि चुप रहते हुए विरोध नहीं करते हैं, तो सोचते हैं अब ये जो है मतलब सीख गया है, सीख गया है। तो लाए तो माता ने बालक को नहलाया और आभूषण पहनाए, सजाया, और फिर पिता के पास बालक को लाया गया, है ना। हाँ, और प्रहलाद जो है ने हिरण्यकश्यप के चरणों में नमस्कार किया। तो तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो जो है मतलब हमारे अभी ये जो है हमारे रास्ते में आ गया है, तो बड़ा मतलब बहुत आशा और बहुत प्रसन्नता से हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया और खूब देर तक दोनों भुजाओं से आलिंगन किया प्रहलाद का, बहुत प्रसन्न होकर के आलिंगन किया और फिर आंसू से जो है बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए पूछा, बच्चे को जो है हर्ष के खुशी के आंसुओं से जो है प्रहलाद को भिगो दिया और फिर पूछा कि कुछ उत्तम बात जो तुमने गुरुओं से सीखी है बताओ। अब तो प्रहलाद जी और आगे बढ़ गए और क्या बताएं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब तो बहुत आगे की बात बता दी। इस पर जो है हिरण्यकशिपु ने अभी भी गुस्सा नहीं किया प्रहलाद के ऊपर, अभी उसने प्रहलाद पर गुस्सा नहीं किया, ये प्रहलाद को वो मान रहा है कि ये निर्दोष है और बच्चे को जो है जैसा सिखाया जाए वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो अब जो है वो गुस्सा हुआ गुरु पुत्रों पर गुस्सा हुआ कि तुम लोग जो है मेरे शत्रु विष्णु से मिले हुए हो, तुम विष्णु के पक्षपाती हो और मेरे जो है मित्र के रूप में काम करते हो, शत्रु का काम करते हो, मेरा अनादर करके बालक को असार वस्तु का पाठ सिखाया है तुमने। बहुत गुस्सा हुआ। तो अब गुरु पुत्र बोले कि इसने ना तो हमसे सीखा है ना किसी अन्य से सीखा है, इसकी बुद्धि स्वभाव से ही ऐसी है। कौन जानता है कि प्रहलाद गर्भ के अंदर थे माता के घर में, तो किसने सिखाया है ना, तो कोई मतलब ना जान सकता है ना कोई बोल सकता है। तो गुरु पुत्र क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि ऐसी है, स्वभाव से ऐसी बुद्धि है, हैं? तो फिर प्रहलाद से अब जो है हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, अब प्रहलाद के ऊपर गुस्सा आया, अब पहली बार प्रहलाद के ऊपर गुस्सा आया जब गुरु पुत्र ने बताया कि स्वभाव से ही ऐसा ही है, ये स्वभाव से ही ऐसा ही है, किसी ने नहीं सिखाया इसको, सिखाया तो है किसी ने लेकिन कौन जानता है, किसी ने नहीं सिखाया, स्वभाव से ऐसा है ये। तो फिर प्रहलाद से बोला कौन, हिरण्यकश्यप, धूर्त, यदि गुरुओं से तुमने शिक्षा नहीं प्राप्त की तो कहां से ऐसी दुष्ट बुद्धि हुई तुझसी तेरी, तेरे गुरु कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं सिखाया, कहां से इतनी गलत बुद्धि हुई तेरी। तो प्रहलाद जी ने क्या नारद जी का नाम बताया, नहीं बताया बल्कि दूसरी तरीके से जवाब दिया। कैसे जवाब दिया, मतिर न कृष्ण परतः सुतो वा गृहो विपद्यते गृह व्रता नाम अदांध गोभिर विशताम मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मणा नाम। प्रहलाद जी ने क्या कहा कि जो कृष्ण में मति है वो जो है ना तो किसी के द्वारा प्राप्त होती है, अगर कोई व्यक्ति गृह व्रती है, गृह व्रता नाम, उसने घर को ही अपना सबसे बड़ा मतलब पूजा कर्तव्य मान रखा है कि भाई घर ही चलाना है, घर परिवार में आसक्ति ही जो है उसने अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया है, तो कृष्ण में मति ना तो किसी दूसरे के द्वारा उसको प्राप्त हो सकती है और ना अपने आप प्राप्त हो सकती है। मतिर न कृष्ण परता सुतो वा और मितो विपद दे दे और आपस में एक दूसरे से मिल करके भी नहीं प्राप्त हो सकती कृष्ण में मति, कि किसी दूसरे से तो नहीं प्राप्त हो सकती, अपने आप ही प्राप्त हो सकती, शायद आपस में मिल करके कुछ जोड़ तोड़ करके प्राप्त कर लें। तो प्रहलाद जी कहते हैं ना मिथो भी पद गृह व्रताना, क्योंकि उन्होंने घर को ही अपना व्रत मान लिया है। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, क्योंकि उनकी इंद्रियां बस में नहीं है तो कहां जाते हैं, नरक में जाते हैं और पुनः पुनः चर्वित चर्मणाना, और जो इंद्रिय तृप्ति के जो भोग भोगते हैं वो क्या है, बार बार चबाए हुए को चबाना है, कुछ रस नहीं मिलता है। जैसे आपने जो है गन्ना चबा लिया और उसको थूक दिया और फिर उसको उठाए और फिर चबाएं, क्या मिलेगा, है ना, केवल उसमें जो है और कष्ट ही मिलेगा, है कुछ भी रस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है जब प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जब तक महात्माओं के चरण धूल में स्नान नहीं करते तब तक ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, प्रहलाद महाराज ने ऐसे उत्तर दिया। तो किसी प्रश्न का जो है उत्तर देना है तो ऐसे हमें उत्तर देना चाहिए, ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे गलत तरीके से कि आपको जो है किसने बिगाड़ा, तो आप बता दोगे आनंद चैतन्य प्रभु ने। तो इस तरह से जवाब नहीं देना, ठीक है ना। तो दूसरे प्रकार से जवाब दिया। तो प्रहलाद जी ने जो है मतलब क्या जवाब दिया कि ऐसी मति जैसी मति मुझे प्राप्त हुई है, ऐसी मति जब तक जो शुद्ध महात्मा है उनके चरण की धूलि का से स्नान ना किया जाए तब तक नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन कैसे प्राप्त हुई ये नहीं बताए, है ना। कौन से महात्मा है जिनके चरण धूलि में मैंने स्नान किया वो सब नहीं बताया प्रहलाद महाराज ने। तब उसने क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने गोद से फेंक दिया प्रहलाद को। क्या किया, गोद में बैठाया था, कस के पटक दिया, ऐसे नहीं मतलब ऐसे कस के पटक दिया जमीन में प्रहलाद को। और अब उसने क्या कहा कि अब इसका जो है मतलब वध कर दो, क्योंकि ये जो है अब असुर कुल में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो ये बन गया है, है? और अब जो है कुछ उपाय नहीं है इसको सुधारने का, इसको जो है नष्ट करना ही सुरक्षा है, नष्ट करने में ही सुरक्षा है। अगर नष्ट नहीं किया इसको तो ये जो है बिगाड़ देगा, सब असुरों को बिगाड़ देगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जैसे अपनी उंगली ही में अगर मान लो जहर का इन्फेक्शन हो जाए है तो फिर कटवाना पड़ती, इससे पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी, नहीं तो पूरे शरीर में फिर जहर फैल जाएगा। तो अपने ही शरीर का एक अंग है, अपने शरीर का ही एक हिस्सा है कि मेरा पुत्र है, तो है तो वो जो आसक्ति है अपने पुत्र में है, लेकिन और अपने हाथ से मारना भी नहीं चाहता प्रहलाद को, क्योंकि तो अपना ही शरीर का एक जैसे हिस्सा है। लेकिन आदेश देता है असुरों को हिरण्यकश्यपु कि मेरी आंखों से दूर भी ले जाओ और इसकी हत्या कर दो, अपनी आंखों के सामने भी वो नहीं देखना चाहता प्रहलाद की हत्या हो, है ना। लेकिन हत्या कर दो इसकी, क्योंकि असुरों की अब रक्षा इसी में है, असुरों की समाज असुर समाज की जो है रक्षा इसी में है। इस प्रकार से जो है हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद जी की हत्या का आदेश दे दिया तो फिर असुरों ने जो है हर प्रकार के उपाय किए। तो चूंकि अब समय तो हमारे पास नहीं है, है ना, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि भगवान नरसिंह देव फिर खंभे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो कल वो दिन आएगा, तो चूंकि आप लोग ये जो कार्यक्रम होता है केवल सोमवार को ही होता है, तो इसलिए हमें आदेश मिला था कि ये कथा हम आप लोगों को सुनाएं। अब आप लोगों के बीच में कुछ और भी सूचना है, उसको सूचना देना है। आनंद चरण
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को यह सूचना दी जाती है, वैसे तो जो अभी प्रभु जी ने कथा किया नरसिंह देव भगवान के इतना बड़ा है, विस्तृत है, और आधे घंटे में प्रभु जी ने किया तो बहुत समय कम था, नहीं तो प्रभु जी इस कथा का राष्ट्रस्वधन आपको बहुत बढ़िया मात्रा में करा दे। क्योंकि हमने सुना था एक बार दो दिन का कथा हुआ था प्रभु जी का इधर, तो उसकी छाप जो है दिमाग में कई साल से पड़ी हुई, इस समय बहुत समय कम था। तो अभी गौर कथा जो प्रभु जी का हुआ था 11 मार्च से 13 मार्च 2014 इसी साल में, तो उसका जो DVD आ गया है, तो आप कोई भी लेना चाहें तो बुक